मई 1968 की लड़ी है। प्राते ग्लास डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है, क्यों?
बाप दादा दोनों
बाप सुप्रीम सोल और मुकरर तो एक हो गए, और दादा माने ब्रह्मा, सुप्रीम सोल रथ के बगैर काम नहीं कर सकते, और दादा की सोल इस समय कभी सुख की शरीर कभी बीज रूप इसके अलग पार्ट हो जाती है, तो सूक्ष्म पर्सनालिटी है उनकी अपनी, स्थूल पर्सनालिटी नहीं है, तो वो भी प्रवेश करते हैं। तो डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है, बच्चों को अब तो समझाई दिया है, मैं हूं आत्मा शांत स्वरूप, जब मेरा धर्म ही है शांत स्वरूप तो फिर जंगलों में आदि में भटकने की दरकार नहीं है, भटकने से शांति नहीं मिल सकती है, शांति कैसे मिलेगी? इधर उधर 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 चारों तरफ भटकने से शांति मिलेगी
नहीं,
या एकाग्र होने से शांति मिलेगी? बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप, जैसे तुम बच्चे शांत स्वरूप हो मैं भी
शांत
स्वरूप, बच्चे तो भटकते हैं इसलिए अशांत स्वरूप हो जाते, और बाप तो परम नाम का रहने वाला है, ऊंचे से ऊंचे स्पॉट का रहने वाला है, तो बाप इस दुनिया में नहीं भटकते हैं। बाप सेवा के अर्थ दुनिया में भटकते नहीं है, तो शांत स्वरूप कैसे हैं?
फिर भी वो निराकार स्टेज में रहते हैं।
नहीं, उनका मुकरर रथ है या उनका उनको वो ठिकाना मिला हुआ है, तो मैं भी शांत स्वरूप हूं, ठिकाना नहीं मिलता है तो अशांति होती है, जब ठिकाना मिल जाए तो शांति हो जाती है। 63 जन्म आत्मा को ठिकाना मिला, ठिकाना नहीं मिला तो अशांति होती रही। अभी जितना हम ठिकाने पर टिकते हैं उतना आत्मा शांत रहती है, तो ये समझना बहुत सहज बात है, हर एक बात बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है समझने में। ये भी बच्चे जानते हैं सिवाय बेहद के बाप के ये ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता, ज्ञान सागर एक ही बाप है, देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता, पिता देहधारी है या देह से सदैव परे बुद्धि रहने वाला है, प्रजापिता क्या है? प्रजापिता की सोल को क्या कहें? देहधारी है, देह में बुद्धि धरी रहती है या देह से परे की स्टेज में रहती है? शिव और शिव में प्रजापिता में अंतर क्या करेंगे? फिर शिव अभोक्ता और प्रजापिता भोक्ता, तो किसकी बुद्धि धरी रहती है देह में? देह में बुद्धि धरे बगैर रहे बगैर कुछ भोगा जा सकता है क्या? है? नहीं भोगा जा सकता, इसलिए देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। प्रजापिता की भी बुद्धि जब तक देह में धरी हुई है, सदाकाल आत्म की स्थिति नहीं बनी है, 24 घंटे में अगर एक सेकंड में भी बुद्धि देह में धरी हुई है तो देहधारी कहेंगे या आत्माभिमानी कहेंगे? तो भी देहधारी। तो देहधारी को कब ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता क्या? ज्ञान सागर फिर किसे कहेंगे? सुप्रीम सोल भाप आकर के उस तन में पाठ बजाते हैं तो ज्ञान सागर है। रचयिता ही रचना के आदि में जनता ज्ञान देते हैं। रचयिता कौन है, साकार या निराकार? रचयिता तो साकार ही है। साकार में वो निराकार आकर के ज्ञान देते हैं। वो तो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, कई अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं। क्या अंतर भूल जाते हैं? निराकार और साकार दोनों के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्ञान पारे में सब नहीं है। जैसे पारा एक जगह पर ठहरता नहीं, बाकी है पारे मिसल फिसल जाती है। स्कूल में तो जरूर नंबर वन होंगी ना, कौन स्कूल में नंबर वन कौन होंगे? और फिर नंबर वार कौन होंगे? इस मुकर्रर रद्द में प्रवेश करते हैं वो तो नंबर वन है, लेकिन और स्कूल में सब नंबर वार होंगे। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सत्संग में कब नंबर नहीं गिना जाता। नाम देते हैं सत्संग, लेकिन वो कोई स्कूल नहीं है। ये तो स्कूल है, इसको समझने में भी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं, ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ही नहीं सकते, क्यों क्यों नहीं ज्ञान दे सकते? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति, भक्ति तो अनेकों से आती है। सभी देहधारी ऐसे थोड़े कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। भक्ति अपने से ऊंच की जाती है या नीच की जाती है? अपने से ऊंच की भक्ति करेंगे, जिसको नीच समझेंगे उसकी भक्ति थोड़ी, भक्ति भावना थोड़ी होती है उसके लिए। तो शिव बाबा का भक्ति करते हैं क्या, ऐसे थोड़ी कहेंगे? वो किसकी भक्ति करेंगे? शिव बाबा से ऊंची तो कोई है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करेंगे? एक ही पाप है जिसको देह नहीं है, वो किसी की भक्ति करते ही नहीं। बाकी जो भी देहधारी है वो भक्ति करेंगे। क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बार, बाकी नाकों से जो कुछ देखा जाता है चित्र आदि हो सभी रचना। ये सभी बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप समझते समझाते रहते हैं तुमको बेहद का वर्षा, बाप बेहद तो मिल ही नहीं सकता, बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वैकुंठ की बादशाही तुमको बाप से मिलती है। इन लक्ष्मीनारायण की राजाई भारत में थी, 5-4 वर्ष पहले इनकी राजधानी चली, 2000 वर्ष पूर्व सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। तुम बच्चे जानते हो ये तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई ये बात बता भी नहीं सकता। और पति तो पावन भी कोई बाप है, ये पति तो पावन की बात समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है कि वो पतितों को पावन कैसे बनाता है। संघ के रंग से पशु से पावन हो जाता है। और संघ का रंग कैसे लगता है? अगर वो साकार तन में ना आवे तो संघ का रंग लग सकता है क्या? क्यों? ब्रह्मा के तन में आया, साकार में तो आया ना, ज्ञान सुना भी चला गया। अगर हम याद करते रहे तो पति से पावन नहीं बनेंगे। क्योंकि बाप के असली पार्ट को पहचानना या पहचान देना ये बेसिक नॉलेज में होता ही नहीं। बाप का असली पार्ट माँ नहीं दे सकती। बाप का परिचय कौन देता है? बाप खुद ही आकर के देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बता ही नहीं सकता। वो ही पति तो पावन है। तो समझाने में बड़ी मेहनत होती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई इन बातों को समझेंगे। समझने वाले, बैठने वाले, समझने वाले, सुनने वाले हैं तो बहुत, लेकिन समझेंगे कोटों में कोई। ये चक्र भी तो समझाया गया है। तुम गवर्नर आदि के बड़ों बड़ों के बंगले तक जाकर के समझाते हो, उनको चित्र आदि दिखाते हो। चित्र को छिपा कर तोड़ ही रखते हो। ये तो सारी दुनिया के लिए नारी है। कोई कोई अहंकारी मनुष्य कहते हैं तुमने ये क्यों लिखा है? अरे ये तो सभी बड़े बड़े आदमी देखते हैं, सभी इस नॉलेज को अच्छा समझते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो? सब अच्छा मानते हैं। सीढ़ी भी देखो बिल्कुल कायदे से रहे, फिर कोई कोई गुरू गुरू करते रहते हैं। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल बनाते हैं उनको अच्छी तरह समझा करके उन्हें दृष्टि दो। ज्ञान की भी पावर भरो और फिर उनमें वाइब्रेशन की भी पावर भरो। आगे चल करके सभी को बाबा की बातें पसंद आ देंगी। क्यों अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी वो वाइब्रेशन बना नहीं है। अभी वो नॉलेज चारों तरफ फैली नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आएगा अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, चारों तरफ ये ज्ञान बहेगा। तो आगे चल करके सभी को बाबा की बातें पसंद आ जाएगी। समझाना तो बच्चों को ही है, क्योंकि अखबारों से, टीवी से समझते नहीं है ये ज्ञान। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अखबारों से, टीवी से, लिटरेचर से समझ में आ जाए, ऐसा ज्ञान है। जब तक सन्मुख बैठ करके कोई न समझा दे तब तक इसकी गहराई समझ में नहीं आती। पाप का परिचय तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाकी शिव बाबा बाबा के पास ले आना, उससे तो देवी पने की बात है। बाबा तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, ऐसे ही पकड़ करके बिना समझाए किसी को ले आए तो फायदा होगा? तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बाबा किसी से मिलते नहीं। क्यों? पकड़ के कोई ले आया, जैसे अहिल्या के लिए गायन है, समझा तो नहीं, विकारी था लेकिन बाबा के सामने ले आई, तो बाबा मिलते नहीं उसे। सामने आ गया तो बाबा नहीं मिलते, तो बिंदी है तो पति के सामने आएगा ही नहीं। जब चाहे तब हो जाए और जब चाहे तो आए। बाबा तो कहते हैं मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ। जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को पहचाने हुए हैं, उन बच्चों को याद करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, दूसरों से बात करता ही हूँ। तो सामने आके बैठ गए तो कौन देखता है? रत्न देखता है। शिव बाबा उन बच्चों को देखते ही नहीं। ये बाबा समझा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं। बाबा को समझते हैं जंगल से एप्स को ले आते हैं, उनको हम क्या समझा लेंगे? कोई भक्ति बाद में राम जी सहन क्यों पसंद है? राम के सामने है, राम की सेना बंदर दिखाते हैं, ये पसंद क्यों है? बाबा कहते हैं मेरे सामने एप्स को बंदर हमको ले आते हैं। इसका मतलब जब तक एप्स हैं, बंदर हैं, तो कनेक्शन है प्रजापिता से। अब जब मंदिर से मंदिर लायक बनते हैं, आत्म की स्थिति धारण करते हैं, तो कनेक्शन किससे दिखता है?
शिव बाबा।
शिव भगवान आज बच्चे तुमको पता है इन जानवरों के जंगल में सबसे बड़ा जानवर बेसमझ कौन है? जवाब दो। इन जानवरों के जंगल में सबसे बड़ा बेसमझ जानवर कौन है? पिता सबसे बड़ा बेसमझ जानवर है। बाबा कहते मैं जानवर में आता ही नहीं है? मैं जानवर में आता हूँ क्या? मैं मनुष्य तन में आता हूँ कि जानवर में आता हूँ? सबसे बड़ा जानवर है शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य साफ बात बताते हैं। बाबा ने समझाया था जो पुजारी है उनको पूज नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं और देवियों की भी पूजा करते हैं। देवियों की पूजा करते हैं कि नहीं? देवियों की भी पूजा करते हैं। उसको पूज नहीं कह सकते। खुद ही शिव बाबा की पुजारी है, उनको पूज कैसे कहा जा सकता? फिर उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं पुजारी, परंतु फॉलोअर्स ही कितने होते हैं? उनकी चाकरी करते रहते हैं, पतित की बैठ पूजा करते हैं। बाबा ने कहा था तुम लिख सकते हो, पुजारी को पूज्य कह नहीं सकते। अपना उनको घमंड कितना है, समझते हैं कि हम पूज्य हैं और ये सब हमारे पुजारी हैं। कलयुग में एक भी पूज्य नहीं हो सकता। पूजा का आधार क्या है? जिनकी पैदाइश ही अपवित्रता से हुई हो उनको पवित्र कैसे कहेंगे? अपना घमंड रहता है। पूज्य होना इम्पॉसिबल। पूज्य की स्थापना, पूज्य देवी देवताओं की स्थापना ऊंचते ऊंची है जो करते हैं। कौन? ऊंचे के ऊंचे शिव बाबा है जो पवित्र ऊंचे के ऊंचे देवताओं की स्थापना करते हैं। आधा कल्प है पूज्य वो देवता है, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने भी ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी तो हमको सदगुरु मिला है, कौन समझते हैं? ब्रह्मा समझते हैं क्या कि गुरु करना भक्ति मार्ग था? अभी हमको सदगुरु मिला है, ब्रह्मा बाबा इस बाबा ने भी ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करण तो भक्ति मार्ग था। कौन समझते हैं? ब्रह्मा बाबा। गुरु समझना गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, क्योंकि अभी तो अभी उनको सदगुरु मिला है। कौन समझता है सदगुरु मिला? ब्रह्मा बाबा तो मिला था। सदगुरु साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? शुरू कर मिला कर दिया, जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो बीच में होता है ना साकार, तो ब्रह्मा बाबा साकार रूप में कोई सदगुरु मिला? मिला ही नहीं। समझते हैं, समझना और प्रैक्टिकल में मिलना बात एक ही है क्या? समझना अलग बात, कोई भी समझ सकता है कुछ भी, लेकिन उनको सदगुरु तो कोई मिला ही नहीं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं सदगुरु मिला है जो सभी को पूज्य बनाते हैं, तो उन्होंने सदगुरु किसको समझा? ब्रह्मा की तो बात ही चल रही है। ब्रह्मा ने सदगुरु किसको समझाया? पिंडी को सदगुरु समझा, या तो गीता का भगवान नहीं, फिर गीता का भगवान तो साकार में होता है ना, किसको समझा? गीता का भगवान अपने को खुद ही समझे। तो अभी समझते हैं हमको सदगुरु मिला है जो सभी को पूज्य बनाते हैं, तो यह क्या उन्होंने सही समझा? सभी को पूज्य बनाया क्या? अगर स्वयं के स्वरूप को सदगुरु समझे तो भी रंग, अगर बिंदी को समझे तो भी रंग। तो ये समझते हैं कि शिव बाबा सिर्फ एक को नहीं पति से पावन बनाते हैं, एक की सदगति नहीं करते हैं, लेकिन सभी की सदगति करते हैं, सभी को बनाते हैं। आत्मा सभी की सतो प्रधान पूज्य बन जाती है, अभी तो सात तमो प्रधान को जाती है। ये पॉइंट बहुत समझने की है क्या है? अभी एक भी सतो प्रधान नहीं है, अपने को भले समझे लेकिन है सब, है सब तमो प्रधान मन। तो ब्रह्मा बाबा की बात आती कि नहीं उस समय? नहीं आती, तो उनकी भी बात आ जाती है, क्योंकि उन्होंने तो बाप के साकार स्वरूप को ही नहीं समझा। और वो बात तब की छोड़ो, वो बात अभी आती है कि नहीं? ये बात अभी लागू होती है नहीं कि अभी सभी तमो प्रधान को जाइए? अभी भी सभी तमो प्रधान पुजारी है क्या? प्रजापिता भी क्या है? वो भी तमो प्रधान है, पुजारी है। जब पूज्य बन जाएगा तो फिर नारायण का रूप बन जाएगा। नारायण में और प्रजापिता में अंतर है कि नहीं? नारायण है संपन्न रूप और प्रजापिता है ऐसा रूप, तमो प्रधान रूप। हाँ, प्रजापिता तो भक्ति मार्ग में और ही पत्र की दाढ़ दिखाते हैं, ज्यादा तमो प्रधान बनता है ना शूटिंग पीरियड में, तो अपने को ही बादशाह समझता है, अपने को ही भगवान समझ के बैठ जाता है। तो शास्त्रों में दिखाया है उनका गला काट दिया, गला काट दिया मैंने आत्मा अलग कर दी और शरीर अलग कर दिया। फिर देवताओं ने बहुत विनती की तो उनको थोड़ा बकरी का सर बात के लगा, मैं ये सबको याद बना रहे क्या? ये मैंने की है उपाधि जो है बहुत खराब है। बाप कहते शत्रु में कभी कोई पुजारी हो नहीं सकता, शत्रु में सब पूज्य होते हैं और कलयुग में सब पुजारी होते हैं। हम कहेंगे कि तो संगम युग है, हम ना अभी पूज्य है न हम अभी पुजारी है। संन्यासी होगी समझाया है, ये कोई पवित्र थोड़ी ही है, पैदा होते हैं तो पवित्रता कहां से आएगी? पैदाइशी पवित्र अपवित्रता की। तो फिर ब्राह्मणों के लिए क्या कहा है?
यहाँ सकल गुण से जन्म होते
हैं। ब्राह्मणों का तन भले दुख से पैदा होता है लेकिन आत्मा, आत्मा की जो पहचान करते हैं कि हम देवता थे, अब हम असुर बने हैं, अभी हम फिर देवता बनने वाले हैं, ये आत्मिक स्थिति की पहचान होने के कारण हमारा जन्म कोई दुख से नहीं है। हमारा जन्म कैसे है? हमारा जन्म ज्ञान से है, ज्ञान अमृत से है। तो सन्यासी तो फिर से पुनर्जन्म लेते रहते हैं, परंतु देवताएं हैं पूज्य, क्योंकि सत्युग में रावण राज्य तो होता ही नहीं। अब तो रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य, ये अक्षर तो कहते हैं ना, परंतु राम राज्य कब होता है और रावण राज्य कब होता है ये किसी ने बताया? कब होता है राम राज्य और कब होता है रावण राज्य? हम ब्राह्मणों को तो पता होगा है? राम राज्य कब होता है और रावण राज्य कब होता है? सभी को होता है राम राज्य और अभी है रावण राज्य। जानते कुछ है नहीं, मेढकों मिसल ट्रां ट्रां करते रहते हैं राम राज्य रावण राज्य। 3 मई 1968 की वाले का मिसल मेढकों की भी बड़ी जमात होती है ना, सारे मेढक इकट्ठे होकर के ट्रां ट्रां करते हैं तालाब के किनारे, बड़ा बंदर लगता है, खुशी में जैसे खाते रहते गाना गाते रहते हैं। मनुष्य की अवस्था में मेढकों मिसल है, अर्थ कुछ भी नहीं कह सकते, देखने में बल मनुष्य आते हैं, परंतु जब तक मेढक पना जंगली पना न दिखा रहे तब तक उनको सोके ही नहीं आते। जो अर्थ कुछ भी नहीं, ऐसे बोलते रहते जैसे मेढक बकते रहते हैं, ये जैसे बकने की एक टेव पड़ गई। कितनी इनकी पंचायती है, फलानी सभा कहां से 10 कहां से 20, मिल गए तो फिर एक को छेड़ करके उनके पास ले जाने। कितनी कचड़ पत्ती है, बत्ती मारे को गाया जाता है पत्थर बुद्धि। तुम अभी पास बुद्धि बन रहे हो, बाकी सब सभी पत्थर बुद्धि, फिर उसमें भी कोई 2% पार्स बुद्धि बने, कोई 5% बने, बाकी तो 5% अगर पार्स बुद्धि बने तो पत्थर बुद्धि कितने परसेंट हुए? 98% पत्थर बुद्धि। बाप ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब तरह के चाहिए, पिछाड़ी में आकर कुछ न कुछ खा करके श्रेष्ठ बन जाने। अभी ऊपर से भी खा करके कबूल बच्चे आते रहते, सर्कस में कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, फिर कोई हल्के सल्के एक्टर्स भी होते हैं। तो ये है बेहद की बात, ये भी बेहद का मानवा है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, या तो बच्चे आते ही रिफ्रेश होने के लिए, कोई हवा खाने के लिए थोड़े ही आते हो, कई तो और ही हंगामा मचाते रहते, कुछ भी जानते नहीं है, कैसे याद करें, किसको याद करें, क्योंकि ये ब्राह्मण तो है नहीं। पत्थर बुद्धि को ले आते हैं, कौन बात ब्राह्मण नहीं है, जो पत्थर बुद्धि को उठा ले आते हैं उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, अहिल्या को क्या कहेंगे? फिर भिखारी को उठा के ले आई तो उसको पत्थर बुद्धि कहे या पारस बुद्धि कहे या ब्राह्मण कहे या न कहे, ब्राह्मण तो कह नहीं सकते, फिर कौन सी धर्म की है? अहिल्या फिर कौन सी धर्म की है? ब्राह्मण नहीं है तो कोई और धर्म की होगी ना, तो कौन सी धर्म की है? इस्लाम धर्म की है। तो वह दुनिया भी वाइब्रेशन बनाती रहती है, पत्थर बुद्धि बनाने वाले दुनिया भी वाइब्रेशन ही बना देते। यहां तो बाप जोर से पकड़ करके खड़ा करते हैं, बाद में तुमको कौन पकड़ेगा? बाप तो यहां बैठे हैं, सीमत द्वारा तुम माया पर जीत पाते हो, माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहां तो बाप तुमको कशिश करते हैं, खींचते हैं, बाप कभी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाप तो सत्य है ना। तुम यहां सत्य के समय में बैठे हो, दूसरे सभी असत्संग हैं, उनको सत्संग कहना ही बड़ी भारी गलती है। क्यों? और सत्संगों को सत्संग कहना गलती क्यों है?
बाप को पहचानते हैं,
क्योंकि दुनिया में सत्य तो एक बाप ही बतलाने वाला है और बाकी तो सब कुछ न कुछ झूठ बात मिक्स करते हैं। सच्चाई तो बताते नहीं, सत्य तो ज्ञान को कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है, तो एक ही सत्य है, तो सत्संग कहां से आया? तुम जानते हो सत्य एक ही बात, शंकराचार्य भी एक सत्य की पूजा करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। पता क्यों नहीं? पता है तब तो दरवाजे पर जाके कहते हैं ओम नमो नारायण, कहते कि नहीं? तो नहीं जानते कि नारायण ही सत्य है? इस सत्य कहने की कथा घर घर में होती है, भले शिव की पूजा करते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि जो शिव है, जो शिव कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है, वो ही फिर नारायण ही बन जाता है। उसमें दो आत्माएं हैं, एक है शरीरधारी और एक है निराकारी। उन विचारों को ये पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो फिर उनको क्या कहेंगे? इतनी जनसंख्या है, लाखों मनुष्य उनके पीछे जाते, जैसे गुरु खोजों का गुरु आधा कण है, मुसलमानों का गुरु आधा कण है, वो भी क्या करते हैं? कितने हैं उनके फॉलोअर्स हैं? उन्हों को हर महीना देना होता है, वो अलग, और फिर जब यहां आते हैं तो भी भेंट उनको मिलती है, हीरो में भजन करते हैं। इसका आगा कर खाता क्या है? नाम क्या रखा? आगा कर, ये क्या बात हुई? क्या खाता है? आग खाता है, ये क्या बात हुई? आग खाता है, इतनी उसकी पूजा करते हैं, कितना उसको देते हैं, हीरो में भजन करते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग में मुसलमान लोग आला खां की हीरो में भजन करते हैं, ये भक्ति मार्ग में चलन उनकी चल रही है, परंपरा चल रही है। ये कहां की परंपरा है? कैसे
यहां
वो आत्मा नहीं करती है, आत्मा तो है प्रजापिता की, और प्रजापिता में शिव प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो आगा खां माने आग खाता है, आग खाता है ना, आग क्या होती है? काम आग्नि की आग है जिसको वो खा जाता है। वैसे भी शास्त्रों में क्या दिखाते हैं, शंकर ने क्या किया? विष किया, विष माने विकारों किया थी? तो हीरो में उसका भजन करते हैं, हीरो में भजन करने का मतलब क्या हुआ? ये कौन से चैतन्य या जड़ है? वो तो जड़ बुद्धि आधा था है, उसकी तो जड़ हीरो से वजन करते हैं। एक तरफ सैकड़ों हीरे चढ़ाए और एक तरफ उसको बैठाते हैं। और यहाँ बात यहाँ संगम युग की है, संगम युग में एक सैकड़ों हीरे रख दिए जाए चैतन्य आत्माएं, जो पुरुषार्थी है माला के मणके बनते हैं, और दूसरी तरफ एक बाप को रखा जाए तो भी वजन किसका ज्यादा होगा? बाप का वजन ज्यादा हो जाता है। तो हीरो ने वजन करते हैं नहीं, तो हीरो ने वजन कब किया नहीं जाता है। सत्युग में हीरे जवाब तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर मिसल हो जाएंगे जो मकानों में लगाते हैं। क्या यह संगम में कौन से मकान है? वो तो सत्युग में हीरे जवाहरात स्थूल जवाहरात होंगे जो मकानों में लगाएंगे। और यहाँ यहाँ संगठन रूपी मकान है, संगठन रूपी किला है, संगठन रूपी किला, उस किले में क्या लगाना है? जो संगठन है वो कैसे बनेंगे? हीरो के संगठन बनेंगे, हीरो पहरेदारियों के संगठन तैयार होने। तो यहाँ कोई थोड़े ही हीरा जैसा मकान होगा, स्थूल मकान की बात हो रही है न। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको हीरो का दान मिले, पंखी यादगार हुई संगम की, ये यादगार चैतन्य हीरो की बात है। तो देखो उनके पास कितने पैसे हैं, किनके पास? आदा खान के पास, वो तो स्थूल धन है। पापात्मा पापात्माओं को ही देते हैं, देने वाले भी पापात्मा और वो आदा खान भी पापात्मा, उनसे पाप करते हैं तो देने वाले पर भी पाप चढ़ जाते हैं, अजामिल जैसे पाप ही बन जाते हैं। बहुत दंड करते हैं दूसरे धर्म वाले का जाकर बनते हैं, आगा खाना जब भारत में आता है तो हिंदू भी ऐसे बहुत से निकल पड़ते हैं जो उनको जाकर बहुत आदर सत्कार करते हैं, दूसरे धर्म वाले का जाकर बनते हैं, उनको कहेंगे बेसम। ये बातें भगवान में समझाते हैं, बाकी इन बातों को और कोई मनुष्य समझाए नहीं सकता। क्या बात है, इसकी बात चल रही है, आगा खां की बात चल रही थी। ये आगा खां का जो मिसाल है वो कहां की बात है, कैसे लगती है, इसका क्या अर्थ है, ये कोई और भगवान के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा ही लिखा हुआ हो भगवान वाले, बाबा तो एक बार कहेंगे ऐसे करो, बाबा को दस बार तो नहीं कहेंगे, हमेशा लिखो त्रिभुवन की शिव भगवान वाले। क्या क्यों ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा? दो मूर्ति शिव भगवान वास या एक मूर्ति शिव भगवान वास लिखे तो क्या अंतर पड़ेगा? ब्रह्मा कुमारियां क्या समझते हैं? वो समझते हैं एक मूर्ति ही उवाच करती है, बाकी दो मूर्तियां शंकर और विष्णु को उवाच ही नहीं करते, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अरे तीन मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियां ही शक्ति पर आकर के उवाच करती है, बोलती है सिर्फ शिव भगवान, ऐसे कहने से तो मुझेंगे क्यों? शिव भगवान उवाच ऐसे कहने से मुझेंगे क्यों? क्योंकि शिव बिंदी का नाम है, बिंदी कैसे बोलेगी? बिंदी भी कब बोलेगी? जब तीन मूर्तियों में, तीन साकार मूर्तियों में प्रवेश करे तभी तो बिंदी बोलेगी। है तो भगवान निराकार, इसलिए उवाच करने के लिए फिर त्रिमूर्ति से भगवान उवाच गाया। त्रिमूर्ति के चित्र भी है, दोनों जो त्रिमूर्ति के चित्र बनाए हैं उन्होंने शिव बाबा जी है त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है कहां गया है
अंदर
अंदर त्रिमूर्ति का चित्र जो बनाया गया है उसमें शिव बाबा नहीं है ब्रह्मा बाबा तो है असली ब्रह्मा असली बात ब्रह्मा की तो दिखाई है एक मूर्ति तो दिखाई बाकी न विष्णु दिखाया है और न शंकर दिखाया है उसमें शिव बाबा है नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का नाम कहा जाता है ना ब्रह्मा देवता है नमः अभी सत्युग में तो ब्रह्मा देवता का नाम सुना क्या सत्युग में ब्रह्मा होता ही नहीं सत्युग में जितने भी होते हैं वो गाड़ी ऊंचे वाले होते हैं क्या होते ही नहीं तो ब्रह्मा देवता कहां होता है संग गुरु ब्रह्मा देवता है नमः फिर उनको गुरु भी कहते कैसे शंकर जी थे अभी शंकर बापू कैसे ज्ञान देंगे बापू बता दिए किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि शंकर कैसे ज्ञान देंगे बताओ कैसे देंगे ज्ञान शंकर ज्ञान नहीं देंगे उनमें शिव बाप प्रवेश करके ज्ञान देते हैं तीन आत्माएं कार्य करती हैं एक ही शरीर में शंकर होकर शंकर माने विश्व होकर के इसलिए उनका नाम संगति है ये भी नहीं समझते शंकर का ज्ञान कैसे देंगे किसकी भी बुद्धि में नहीं आता तो हम बापू फिर यहां कहां से आए कौन बापू इसकी बापू की बात की है नहीं शंकर बापू फिर यहां कहां से आए यहां माने कहां तो सूक्ष्म पतन में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर यहां इनकी मूर्तियां कहां से आ गई जरूर प्रैक्टिकल साकार तन में शिव ने प्रवेश किया होगा तो उनकी ये मूर्तियां दिखाई चंद्रमा ने भी प्रवेश किया होगा तो उनकी मूर्तियां दिखाई गई शंकर बापू और भाभी पार्वती भैया की पार्वती और भाभी होती है या बाप की भाभी होती है बड़ा भाई बाप से बड़ा कहा जाता है इसलिए बापू बोल दिया शंकर बापू और भाभी पार्वती अच्छा ताई कहो चाची कहो किसको पार्वती को एक तो कहते हैं शंकर बापू पर फिदा हुआ शंकर बापू फिदा हुआ पार्वती पर फिर कहते हैं उनके वीर से विश्व चिंतन पैदा हुए अभी ऐसा कोई है शंकर बापू ये कौन सा वीर है अमोवीर अमोवीर से तो विश्व चिंतन पैदा हो नहीं सकते वो भी नहीं होगा वो तो चरती नहीं होगा ये तो ज्ञान वीर की बात है जब तक ज्ञान बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है ज्ञान की गंगा जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है तब तक समझो ज्ञान पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ और जब तक पूरा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य उसको मानने वाले नहीं है तो कहते हैं कि उनके वीर से बिच्छू टिंड पैदा हुआ तो नीम मकी में क्या खतर ज्ञान ज्ञान तो सुनाया जा रहा है लेकिन जो भी ज्ञान सुनाया जा रहा है वो शुरुआत में ही सारा ज्ञान दे दिया जाता है कि अंत तक ज्ञान चलता है तो ज्ञान अंत में जाके पूरा क्लियर होगा कि अभी पूरा क्लियर हो गया अंत में जाके पूरा क्लियर होगा अभी ज्ञान को संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे ज्ञान की भी क्या है, अभी अधूरी स्टेज है या संपन्न स्टेज है? अभी भी अधूरी स्टेज है। चार अवस्थाओं से ज्ञान पसार होता है। शुरू शुरुआत में जो बीज डाला जाता है वो सात्विक होता है, फिर धीरे धीरे सत्व से सत्व सामान्य से रजो, रजो से तमो, क्योंकि विस्तार होता जाता है। संख्या आत्माओं की सुनने वालों की बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। तो वाइब्रेशन विस्तार में जाने से वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष का विस्तार होता जाता है तो उसका सार ग्लो अप हो जाता है। जैसे छोटा वृक्ष है और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जब तक परिपूर्ण न हो जावे तब तक वो बीज प्रत्यक्ष होगा, बीज माने सार, तब तक बीज प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो ये ज्ञान बीज भी अंत में जाकर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो उनके वीर से बिच्छु चिन्ह पैदा हुए। अभी ऐसा है शंकर बापू, वो फिर ज्ञान कहां से लावेगा बताओ, जवाब दो। वो शंकर बापू ज्ञान कहां से लावेगा? उसको जरूर परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं। कैसी कैसी बातें तुम सुनते आए हो। सच्ची अमर कथा तो ये है, तो बाप आकर के सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम सभी पार्वती हो, एक पार्वती की बात नहीं है, तुम सब पार लगाने वाले हो। बाप तुम सभी को आत्मा समझ, तुम बच्चों को ज्ञान देते हो, भक्ति करते हैं, इसलिए सीताएं कहा जाता है। भक्ति का पद तो भगवान ही रहते हैं, कहते हैं मैं राम हूं। कौन कहते हैं? यहां तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। क्या ईश्वर या भगवान या प्रभु कहने से इतना टेस्ट नहीं आवेगा? क्या कहना चाहिए? शिव बाबा अक्सर बहुत मुझे बाप खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। तो फिर बाबा हुआ ना, आप समझाते हैं आत्मा में ही सभी संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती। निर्लेप होती तो पति क्यों बनती? फिर तो लेपक्षेप को चढ़ना ही नहीं चाहिए, आत्मा ही पति बनती है तो जरूर आत्मा पर लेपक्षेप लगता है। लेपक्षेप लगता है तब तो आत्मा पतित बनती है ना। तीन पांच सती वाणी का पुस्तक कहते भी है भ्रष्टाचारी। कौन? शिष्टाचारी। कौन? अरे आत्मा ही भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाली बनती। आत्मा ही सत्य उत्तरेता में श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाली बनती तो शिष्टाचारी कही जाती। तो फर्क हो गया ना, जो शिष्टाचारी है उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्वो संपन्न हो, संपूर्ण हिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसे गए गाते हैं ना। अपन के लिए कहेंगे हम नीचे हैं, पापी हैं। मान शिष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी है, इसलिए अपन को देवता नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? अपन को देवता नहीं कहते तो अपन को क्या कहते हैं? वो ही देवता जो सत्य त्रेता में देवताएं थे, वो आज अपन को क्या कहते हैं? हिंदू। अपन को देवता नहीं कहते, क्या कहते हैं? हिंदू। ये नहीं कहेंगे हम देवता धर्म के, क्या कहते हैं? हम हिंदू धर्म के। अभी बाप है तो मनुष्य को देवता बनाते, तो महिमा तो है ना। नानक के ग्रंथ में भी महिमा है, सिख लोग खुद मानते हैं सदगुरु अकाल, एक निरंकार ऐसे कहते हैं ना। फिर कहते हैं अकाल मूर्त। अकाल माने वो काल नहीं खाता है। तो काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? तो काल नहीं खाता तो मूर्ति होगी या अमूर्त होगा? मूर्ति ही तो होती है, मूर्ति माने साकार होता है, तभी तो काल नहीं खाता, तब तो उसका गायन कहे सदगुरु आकार मूर्त। बिंदी हो तो मूर्त क्यों कहेंगे? जिस लोग कहते हैं ना सदगुरु आकार मूर्त, माने मूर्तमान भी है साकार भी है, और साकार को काल काल खाते हुए कोई ने देखा नहीं, इसलिए सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। फिर देखो कहते एक है करता फिर करते फिर दूसरा है, बहुत जोर से कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, गुरु नानक को समझ लेते हैं, अब गुरु नानक ने तो शरीर छोड़ दिया, अर्थ कुछ भी नहीं है। अभी बाप जो सदगुरु अकाल है वो समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जो इस बात को समझते हैं कि बाप क्या है, सदगुरु अकाल मूर्त है, सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ सुनते हैं क्या, कोई बाप के सन्मुख बैठ करके रहे हैं तो भी कुछ सुने, लेकिन सन्मुख होते भी नहीं, कई तो यहां से बाहर निकले और फिर खलास, उनको सन्मुख कहें या विमुख कहें, क्यों सन्मुख होकर के भी बुद्धि उनकी इधर उधर बाहर की दुनिया में भटकती रहती है, तो सन्मुख तो नहीं कहने जाएंगे, सन्मुख उनको कहेंगे, विमुख उनको कहेंगे जो सामने बैठे और बुद्धि विपरीत चलती रही, तो क्या कहेंगे, यहाँ ही झोली बह जाती है, बाबा मना करते हैं तब भी संसारी बातें झरबुई झगबुई की बातें मत करो न सुनो, कोई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, बाप के महावाक्यों को भूल ही जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं उनको सर्विस की ड्यूटी तो बजानी है, ड्यूटी पूरी हुई फिर अपनी मस्ती में, गंदे आदमी कहां झूठ आदि बोलते हैं पाप आदि होते हैं वो तो कोई बात नहीं है क्या, पेट की पालना के लिए कुछ धंधे में झूठ बोलना पड़ता है पाप आदि करना पड़ता है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कड़े से कड़ा पाप है कौन सा, कड़े से कड़ा पाप है काम कटा विचरना, उस पर जीत पानी, बाकी झूठ आदि बोलना व्यापारी लोग तो धंधे आदि में झूठ आदि बोलते ही, फिर ईश्वर अर्थ उसमें से दान पुण्य आदि कर देते हैं, दो पैसे तीन पैसे एक आना भी निकालते हैं, समझते हैं हमने पाप भी किया अब हम इसमें से ईश्वर अर्थ दान दे देते हैं तो हमारा पाप मिट जाएगा, आप ही सब लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, शिव बाबा कहते हैं मैं भी बड़ा व्यापारी हूं तुम भी व्यापारी, सरकारी नौकरी वाले मेरे अर्थ नहीं निकालते, बाप ने समझाया है कृष्ण और किसान का बड़ा संबंध है, अच्छा संबंध है क्या संबंध है, अरे कृष्ण होता है संगम युग में या तो कहेंगे सतयुग में, और क्राइस्ट होता है तो आप अच्छा संबंध कहां से बन गया, संगम की सूची की बात है, कौन है संगम की सूची में, क्राइस्ट है ब्रह्मा, क्राइस्ट है ब्रह्मा, तो कृष्ण की सोल है, कृष्ण की सोल इस समय प्रवेश करके पाठ बजाए रही है, संगम में संगम की कृष्ण बनकर के पाठ बजाए रही है, तो कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है, क्रिश्चियन कौन हुए क्राइस्ट कहां है, अरे ब्राह्मणों दुनिया में क्राइस्ट है या नहीं है, ऊपर से आने वाला क्राइस्ट या वो ऊपर से आने वाला जिसमें प्रवेश करता है वो क्राइस्ट है, ऊपर से आने वाला वो अभी आ गया ज्ञान जी, हाँ, जिस शरीर में प्रवेश करता है वो नारायण वाली आत्मा अभी ज्ञान में चल रही है। तो कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। उस क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले उनको कहा जाता है क्राइस्ट, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले कोई तो कहा जाता है क्रिश्चियन। बड़ा अच्छा संबंध है। कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मीनारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट कृष्ण याद आ जाएगा, वैकुंठ स्वर्ग आदि याद आने से कृष्ण ही बुद्धि में आता है, लक्ष्मीनारायण भी याद नहीं आते क्योंकि कृष्ण तो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा ज्यादा पवित्र होता है इसलिए कोशिश करता है। तुमने ये भी साक्षात्कार किया, कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, नर्स आगे खड़ी रहती है, झट उठाया और बच्चे को संभाला। कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी, मटकियां फोड़ना, यह करना, ये सभी किसका काम है, किसका काम है। बाप ने कहा है हरेक बात युक्तियों से होती है। हाँ, बाबा भी तो जादू बोली थी। अब की बात, आदि की बात, बाबा की तो जादू बोली थी। इसमें इतने सारे पैसे बच्चों को बहलाने आदि के लिए ये सभी होता, कब्रिस्तान बनाते थे, ये सभी पार्ट था तो बंद हो गए। बचपन युवा वृद्ध का पार्ट अलग अलग बचता है, जो हुआ सो ब्राह्मण, उनमें कुछ भी संकल्प तो चलना भी चाहिए, तो ब्राह्मण बना हुआ है। हमारा पार्ट बज रहा है ब्राह्मण की तरह से, माया की भी प्रवेशता हो जाती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई फिर माया की मत पर चल पड़ते हैं, कहेंगे रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज है, कब देखा है क्या, सिर्फ चित्र देखते हैं, चरित्र करने वालों को तो देखते नहीं। सेवाओं का तो फिर रूप है, रावण का क्या रूप है बताओ, भाव पूछते तो बताना चाहिए ना।
अनेक रावण,
हाँ, अपने शिव बाबा की मत के बल के आप अपनी मत मिक्स करके दूसरी मत मिक्स करके दे देना, उनको क्या कहेंगे, उन्हीं को कहेंगे रावण संप्रदाय। पांच विकार भूत आकर के प्रवेश करते हैं तो रावण कहा जाता है, कहां प्रवेश करते हैं है? अभी सबसे जास्ती प्रवेशता कहां हो रही है, बीके वालों में हो रही है या पीपी के वालों में हो रही है, पीवी के वालों में बीके वाले आगे प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बीके वालों को तो एडवांस ज्ञान है ही नहीं। एडवांस ज्ञान न होने की वजह से वो नई नई बातें सुनते हैं, वो आत्मा शरीर छोड़ने वाली तो उनको क्रोध आता है, न समझने के कारण वो क्रोध होने के कारण फिर वो टाइम लग जाता है समझने। तो पांच विकार भूत आदत में प्रवेश करते हैं तो उनको फिर रावण कहा जाता है। ये है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया है। तुम बच्चे समझते हो हमारी आत्मा भी सुधरती जाती है, यहां तो शरीर भी आसुरी है और आत्मा सुधरती सुधरती तुम्हारी पावर बच जाएगी तो फिर ये खल उतार देगी, ऐसे तो नाम खल मिल जाएगी, कंचन काया बनेगी। सो तो तब जब आत्मा कंचन हो तब शत्रु नाम काया मिलेगी। सोना कंचन हो तो जेवर भी ऐसा बनेगा, कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं, अभी तो बच्चों की रचयिता और रचना की नानी बुद्धि में चक्कर लगाती रहती है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जाता। कहते हैं ऋषि मुनि भी नीति नीति करके गए, हम कहते हैं लक्ष्मीनारायण से पूछो तो ये भी नीति नीति कहेंगे, परंतु इनसे पूछा नहीं जाता है। कौन पूछेंगे, पूछा जाता है गुरु लोगों से, ये गाया जाता है ऋषि मुनि रचयिता रचना के आत्मजंतु को जानते नहीं थे, गोया तो सिद्ध करते हैं कि हम नास्तिक हैं। फिर तुम उनकी मेहनत क्यों करते हो, उनके आगे माथा क्यों टेकते हो? अभी तो तुम पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला ही खराब हो जाता है। बाबा भी गला खराब करेंगे क्या है? तो गला खराब कौन करते हैं? जब उनका समझाते समझाते गला खराब हो जाता है तो क्या कह रहे हैं, गला बाबा ने खराब कर दिया? ज्ञान समझाते समझाए तो गला खराब हो गया। इसका मतलब जो ज्ञान समझाया वो देवहाट में रहकर के समझाया, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक आदमी को सुनाना तो इतनी आवाज निकालनी चाहिए ना। बाप तो बच्चों को सुना दो जिन्होंने समझाया, बाकी और के साथ फालतू थोड़ी माता लगा लो। अच्छा मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप पैदा गया आपके आगे।